तुम ठीक तो हो ना बहनोश?
जी।
कुछ कहना चाहती हो?
जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ तो कहो मेरी जान, यकीनन कामरान से मुतालिक होगा।
चंद साल पहले आपकी बहन की शादी थी, याद है ना आपको?
हाँ याद है, क्यों क्या हुआ?
आपका वो सूट जो आपने नया खरीदा था और स्त्री के लिए मुझे दिया था।
हाँ याद है अच्छी तरह, मेरा वो सूट जल गया था।
वो सूट मैंने जानबूझ के जलाया था।
कोई बात नहीं, मैं सब जानती थी, लेकिन तुम उस वक्त बहुत छोटी थी।
सिर्फ यही नहीं, कई और बातें भी हैं जो मुझे
जी। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो,
हाँ जी।
हेलो बहनोश, मेरी जान, माँ तुम्हारी इस प्यारी सी आवाज की कुर्बान जाए। कैसी हो मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ सब खैरियत है।
अच्छा सुनो, अदालत से कोई नोटिस आया है तुम्हारे बाप के पास?
हाँ जी आया है।
अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, अगर हमारा कानूनी वकील ये साबित कर दे कि तुम अपने बाप के पास कुछ नहीं हो, तो तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकते, समझ रही हो ना? और बेहतर है कि तुम अपने वकील से भी जाकर मिल लो।
जी बहुत अच्छा।
ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ ठीक हूँ, बस जरा थकन है।
तुमसे ये लोग काम तो नहीं करवाते?
अरे नहीं भाई,
वीजे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो खुश हो ना?
जी हाँ।
तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है, थैंक यू मामा, खुदा हाफिज।
कुछ कहना चाह रही थी?
कुछ नहीं, जाने दे।
ये ले लो बेटा, आपके बाबा ने भेजा है, ले लो बेटा।
वो खुद क्यों नहीं आए?
इसलिए वो खुद तो मुल्क से बाहर है, उन्होंने तुम्हारे लिए पार्सल भिजवाया है। ये ले लो, शाबाश, और अब क्लास में जाओ।
थैंक यू मिस।
बहुत अच्छी बच्ची हो।
बेचारी बच्ची, मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखता है।
जब से आपने मुझे इस तरफ मतवजा किया है, मैं बहुत एहसास हो गई हूँ किस कदर गाफिल थी, इन बच्चों पर गुस्सा होती थी।
कुछ पता है उसके बाप पर कितना कर्जा है?
1,70,00,000 रुपए। सुनो, काश हम इस माह रमजान में कुछ इसके लिए कर सकते हैं।
کچھ رقم تو میں سروش سے بھی لے سکتی ہوں.
اچھا یہ تو اچھی بات ہے, اور کچھ رقم کا انتظام ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کا باپ ایک تاجر تھا جو کہ دیوالیہ ہو چکا تھا, اور تم تو جانتی ہو آج کل فراڈ اور دھوکہ دہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص دیوالیہ ہو جائے تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا.
سروش کہہ رہا تھا کہ کچھ رقم اس نے کار خیر کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور 1,00,000 روپے کی میں نے منت مانی تھی جو میں کسی مستحق کو دینا چاہتی ہوں.
اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے, خدا آپ کی مشکل آسان کرے. اس بچے کی ماں یہاں آئی تھی, بہت بلک بلک کے رو رہی تھی.
انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا.
یہ لیجیے.
شکریہ. تمام اٹینڈنس چیک کر لی؟
جی سب چیک کر لیں. آپ کی بہو کی کچھ خبر ملی؟
نہیں فی الحال تو کچھ پتہ نہیں چلا. 2-3 لوگوں نے کچھ ایڈریس بتائے ہیں لیکن غلط نکلے.
انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ کی نیت اچھی ہے تو خدا اچھا ہی کرے گا. جس طرح آپ سب کی مشکل حل کرتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی مشکل حل ہوگی. امید رکھے.
خدا کرے.
اس مہربیت پر قربان جاؤں, آج تو خدا خیر کرے. لائیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں. لائیں 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 لائیں. یہ تو سب صحیح ہے, آپ نے نمبر کیوں کاٹے؟
تم کب آئے بیٹا؟
ابھی آپ کے سامنے ہی تو آیا ہوں. ویسے یہ پرنسپل صاحبان کب سے پیپر چیک کرنے لگی ہیں؟ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو پیپر چیک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا.
آج ایک ٹیچر نہیں آئی تھی تو میں ان کی کلاس میں چلی گئی اور بچوں سے ٹیسٹ لے لیا.
اب کیا ہوا, کن سوچوں میں گم ہو گئی؟
میں بہت تنگ آ گئی ہوں.
واہ, آپ تو ہمیشہ شاکر رہا کرتی تھی.
شاکر تو اب بھی ہوں, خدایا تیرا شکر.
نہیں نہیں ماما, کوئی بات ضرور ہے, آپ نہیں بتائیں گی؟
نیما تقریباً 3 سال کی ہو گئی ہے.
تو
میں نے تہران کے سبھی اسکولوں میں پتا کر لیا ہے لیکن کہیں بھی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ایڈمیشن نہیں کرایا ہو.
مگر عموماً اس عمر میں بچوں کا داخلہ اسکول میں ہو جاتا ہے. پتا نہیں, شاید جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو کہ اس کا ایڈمیشن ہی نہ ہوا ہو, یا پھر یہ کہ یا شاید جو الزام تم نے پروانے پر لگایا تھا اس کی وجہ سے اس بچے کی ولدیت ہی بدل دی ہو.
آج کامران آیا تھا میرے پاس, کہہ رہا تھا کہ میرا مسئلہ واضح ہونا چاہیے. میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. کچھ غلط بھی نہیں کہا اس نے, وہ کوئی نکما اور لاوارث تو ہے نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی جوان اس عمر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اس کا ارادہ ہے کہ سادگی سے نگاہ کر کے بہنوش کو شمال لے جائے گا. ساحل دریا کے کنارے جو فارم ہاؤس بنایا ہے وہیں زندگی گزاریں گے.
دیکھیے میں کامران کے متعلق اور کچھ بھی نہیں سننا چاہتی ہوں. شادی اور دیگر رسومات پر اب تک جو بھی اخراجات آئے ہیں وہ ماما اسے ادا کر دیں گی. اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتی, جو ہی میرا کام ختم ہو جائے گا میں ماما کے پاس واپس چلی جاؤں گی. اب مجھ میں ان تکراری باتوں کو سننے کا بالکل بھی حوصلہ نہیں ہے, معاف کیجیے گا. السلام علیکم مسز سلیم زادہ. میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میری باتوں کا جواب دیں, بس سن لیجیے.
یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟
یہ نیا ملازم ہے, کرامتی صاحب نے اسے یہاں رکھا ہے.
یہ کرامتی کیا کر رہا ہے؟ کیا بالکل ہی دماغ خراب ہو گیا اس کا؟ یہاں ہمارے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں, اور وہ ہے کہ نیا ملازم رکھ رہے ہیں. جی تو جناب, کس کے نورے چشم ہیں؟
مجھ سے مخاطب ہو؟
جی جناب, آپ سے مخاطب ہوں.
نور چشم بابا کا؟
نہیں, میں آپ سے کام کا پوچھ رہا ہوں. ویسے زبان درازی کے علاوہ اور کیا آتا ہے؟
کمپیوٹر بھی آتا ہے البتہ تھوڑا بہت.
پہلے کہیں کام کیا ہے؟
نہ.
جناب کو بتایا نہیں کیا کام کرنا ہے؟ یعنی کرامتی صاحب نے بتایا نہیں یہاں کیا کام کرنا ہے؟
کیوں نہیں, تھوڑا بہت بتایا.
اچھا, کیا بتایا ہے؟ نادر صاحب, نادر, نادر. نہیں جناب, یہ کہاں سننے والے ہیں, ان کو بھی کوئی روح تو نہیں مل گئی.
سر اس بیچارے کو تنگ مت کریں, اس نے اپنا اعلی سماعت بننے کو دیا ہوا ہے, اب تو اسے بالکل سنائی نہیں دے.
چلو, یہ اور سونے پہ سہاگا ہو گیا. پہلے ہی حضرت کو سنائی نہیں دیتا, اوپر سے اعلی سماعت بھی نہیں. خیر, تو آپ نے بتایا نہیں کہ کیا کام کرنا ہوگا آپ کو.
کچھ کام ہے کسی صاحب کے, کیا نام ہے ان کا, ہاں ارجمن صاحب کے کاموں کو دیکھنا ہے ذرا.
کیا تم دیکھو گے ان کے کاموں کو؟ یہ بتاؤ, ارجمن کی بات کر رہے ہو یا ارجمندی کی؟
وہی جو مسجد میں ہوتے ہیں. اب مجھے کیا پتا کہ وہ ارجمند ہیں ارجمندی, بس ان میں کوئی فرق ہے؟
جی جناب, ارجمن صاحب مسجد میں ہوتے اور ارجمندی صاحب پرائیویٹائزیشن آفس میں.
انہیں مسجد والے کا کہا ہے, فی الحال مجھے یہاں بیٹھ کے انتظار کرنے کو کہا گیا ہے, مزید وہ آ کر بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے.
السلام علیکم, تم ذرا میرے کمرے میں آؤ, تم سے بات کرنی ہے.
مس, اجازت ہے؟
میں 5 سال کی تھی جب میری ماں بابا سے طلاق لے کر بیرون ملک چلی گئیں, اور وہاں جا کر شادی کر لی. بابا تنہا رہے, مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی. کاش تب مجھے اس جگہ کا پتہ چل گیا ہوتا, یہاں کتنی ساری مائیں بنا بچوں کے ہیں. پھر چند سالوں بعد بابا نے شادی کر لی. اس دوران میری ماں چند سالوں کے لیے ایران واپس آئیں, کیونکہ انہوں نے اس دوسرے شوہر سے بھی طلاق لے لی تھی. تب میں 9 سال کی تھی. تب سے جب جب بھی میں اپنی ماں سے ملتی تھی, وہ مجھے میری سوتیلی ماں کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ میں انہیں تنگ کروں. میں نے بھڑکاوے میں آ کے انہیں اتنا تنگ کیا کہ میری عادتیں ثانیہ بن گئی. اب میں جتنا بھی چاہتی ہوں کہ اپنے ان گناہوں کی تلافی کروں, لیکن میں نہیں کر پاتی. جب میں کوما میں تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے معافی مانگنی چاہیے اور خود ان سے بخشوانا چاہیے. بہت کوششیں کرتی ہوں لیکن نہیں کر پاتی. آپ کے بیٹے بھی اب میری طرح بہت پشیمان ہیں, بس وہ یہ بات کہہ نہیں پا رہے. میرا مطلب ہے کہ وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہا. اگر آپ غور سے سنیں گی تو ان کی آواز آپ تک بھی آ جائے گی.
सर ये फैक्स और रसीदें अभी अभी आई हैं। सर जरा प्लीज इस जगह पर भी साइन कर दीजिएगा। जी फरमाइए।
अस्सलाम।
किससे काम था आपको?
जी मैं हिकमत हूँ, बल्कि हम दोनों हिकमत हैं। करामती साहब के पास अगर वक्त हो तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ चंद मिनट।
जी जरूर, मैं पूछ लेती
हूँ। जी शुक्रिया।
जी
सर, कोई मिस्टर और मिसेस हिकमती आए हैं।
उन दोनों को अंदर भेज दो।
जी बेहतर, आप अंदर चले जाएं।
इस तरफ ना। चल।
अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए।
हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
और सुनाइए, क्या हाल है जनाब?
और सुनाइए, कैसे हैं?
तशरीफ रखिए।
शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं।
वाह भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी लिस्ट तैयार भी कर ली।
मेरी वाइफ में हजारों ऐप सही, लेकिन दो खूबियां हैं, एक खुश हाफसा है और दूसरी खुश सलीका है।
जी क्या बात है, अगर तमाम बैंक भी इस तरह लोन देते होते तो तमाम लोगों की मुश्किलें हल हो जाती।
जी रकम भी अंदाज से कहीं ज्यादा है।
हाँ तकरीबन 1 अरब से तो ज्यादा ही होगी, है ना?
कुल कितनी रकम होगी?
यही कोई 3,70,83,00,000 रुपए।
अलबत्ता सूद समेत।
बहुत बड़ी रकम है। इससे तो बआसानी एक फैक्ट्री लगाई जा सकती है।
अलबत्ता हर कोई इतनी रकम से दस्तबरदार नहीं हो सकता, रकम को यूं आसानी से नहीं छोड़ सकता।
ठीक कह रहे हैं जनाब आप, ये इब्लीस की तरह वसवसा अंगेज है।
लेकिन ये अपनी माँ को इतना चाहते हैं कि असली रकम से भी दस्तबरदार होने को तैयार हैं, ताकि इनकी माँ निजात पा सके।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा इससे मैं गुरेज नहीं करूँगा।
बस आप इतना कीजिए कि हमें उन रसीदों की निशानदेही कर दीजिए।
कागजात तो उनकी तलाश के लिए हमें एक वक्त तय करना होगा ताकि मिलकर उसे ढूंढ सकें। इसके बाद हम बड़ी रकम से शुरू करेंगे ताकि हिसाब अदा करें।
माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद हमने कुछ ज्यादा ही जहमत दे दी आपको। आखिर कब तक यूं ही मुसलसल आते जाते रहेंगे?
जी नहीं, जहमत कैसी जनाब?
निहायत माजरत के साथ, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको चक्कर दे रहे हैं या आप हमको चक्कर दे रहे हैं? नहीं मुझे पूछने दो जरा, हम में से कोई एक किसी एक को।
बहरहाल इनकी मालूमात ज्यादा जरूरी है।
बहुत कीमती।
क्या फरमाएंगे, आपकी मालूमात की कीमत क्या होनी चाहिए?
कुछ भी नहीं, मेरी मालूमात की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक बात बता दूं मोहतरमा, मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, इस तमाम दौलत से कहीं बढ़कर।
जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भी इस दौलत को अपने लिए हासिल नहीं करना चाहते, हमारे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती, है ना?
ठीक कह रही।
देखिए जनाब, होशिंग चाहते हैं कि अपनी माँ के लिए ये खुद कुछ करें। अब जबकि आप ऐसा फरमा रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं।
मगर जरा चलती, मैं चाहता हूँ कि काम जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुंचे, ख्वा आज ही से, जैसा आप चाहें।
मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाना चाहता हूँ।
हॉस्पिटल? हॉस्पिटल किस लिए?
पहले आपकी वालदा को जाकर तसल्ली दूं ताकि वो हर तरह से मुतमईन हो जाए।
ठीक। ठीक है।
एक्सक्यूज मी सिस्टर, आईसीयू में आपकी ड्यूटी है।
जी हाँ।
मिसेस हिकमत और पैमान साहब की हालत अब कैसी है?
आप उनके अजीजों में से हैं?
नहीं तो क्यों, क्या हुआ है?
लगता है आपको पहले भी देखा है, उन दोनों की हालत ठीक नहीं है, बल्कि काफी तश्वीशनाक है।
आलिवान आप पहले यहाँ एडमिट रह चुकी हैं।
जी हाँ,
खुदा का शुक्र है अब आप ठीक हैं। तभी आप मुझे देखी हुई लग रही थी। खुदा हाफिज।
मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया था।
जी फरमाइए।
यही कि मिसेज हिकमत के सर पर चोट कैसे लगी थी?
करामती साहब, मेरी वालदा घुटनों में तकलीफ के बायस व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और घबराहट में ऊपर से नीचे गिर गई, और अब जो भी सूरत हाल है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। बाकी हमारी किस्मत, बस यही है सारी हकीकत। अब देखिए क्या होता है।
अच्छा
अच्छा फिर मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और मिसेस सलीम ज़ादा के सिलसिले में कुछ पेशरफ हुई?
नहीं, कुछ खास नहीं। आज मैं हॉस्पिटल गई थी, कोई भी मुलाकात ही नहीं आया था। फिर मैं उनकी वालदा के पास सैनिटोरियम गई। मेरी बातें सुनकर वो रोने लगी पर कुछ बोली नहीं।
कोई बात नहीं, उन लोगों को भी यकीन आने लगेगा, हम यही उम्मीद रखते हैं। आप सलीम ज़ादा की माँ का खास ख्याल रखें, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुमकिन है नेक्स्ट टाइम वो बोलने लगे।
जी हाँ, खुदा करेगा।
चलें आइए उनकी हालत मालूम करते हैं। माशाल्लाह, आप तो काफी अच्छी ड्राइव करते हैं।
जी हाँ।
करामती साहब, इफ्तार पे तो आप हमारे साथ ही होंगे
ना? और नहीं तो क्या?
मुमकिन है कि हमारे काम में थोड़ी देर हो सकती
बिल्कुल।
है।
बिल्कुल। अरे नहीं शुक्रिया, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा।
आप चाहें तो पहले जरा देर बैठ लेते हैं।
भाई ये कोई बैठने का टाइम है, बस आप लोग ही काम करें।
जी फरमाइए।
बस उन अफराद से कॉन्टेक्ट कर लें ताकि वो यहाँ आ जाए।
जी जी, मैं अभी उन लोगों से जिनकी रकम सबसे ज्यादा है कॉन्टेक्ट करती हूँ और एक घंटे बाद आने का कह देती हूँ।
ठीक है ठीक है, ठीक रहेगा। कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर।
जी क्या फरमाया आपने?
मैं कह रहा था यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है।
जी आज दरअसल बात ये है कि हमारी वालदा बीमार हैं, इसलिए हमने सोचा कि सूद के इन पैसों को वापस कर दें।
ये क्या कर रही है?
जी जी जरूर।
खुदा हाफिज।
ये तुम क्या कर रही हो, बाकी लोगों को बुला रही हो?
फोन कर रही थी, आखिर तुम समझते क्यों नहीं, आखिर उसको एतमाद पे भी तो लेना है ना।
तो यूँ कहो ना झूठ मूठ फोन कर रही हो, मैं बिला वजह तुम्हें इशारे कर रहा था।
ऐसा करो, अब तुम जाओ, मैं एक दो फर्जी कॉल्स करके आती हूँ।
चलो ठीक है, तुम इधर उधर फोन करो, मैं आता हूँ।
मैंने कहा करामती साहब।
जी फरमाइए।
जब तक वो लोग आते हैं हम ढूंढना शुरू करें, कागजात बहुत ज्यादा हैं, वो क्या कहते हैं उनको, जमानतनामे, चेक और दीगर कागजात वगैरह, उन्हें ढूंढने में काफी वक्त लगेगा ना।
ठीक है, इसके लिए हमें नीचे तहखाने में जाना होगा।
जी तो चलिए तहखाने में चलते हैं। चले चलते हैं। इस तरह।
Thank you.
हर जगह तलाश कर चुकी हूँ, इन तमाम बक्सों में, यहाँ नहीं है।
ये रहे वो कागजात, चलें यहां से बाहर चलते हैं, यहां घुटन बहुत ज्यादा है।
इससे भी ज्यादा हो सकती है।
ये कागजात मुझे दे दो, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे धोखा दे सके।
बस करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया मिस्टर, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता।
यहां से तुम्हारी माँ का वाहिद वसीला है बदबख्त।
आज मैं अदालत गया था, हुक्म मिला कि पहले तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, वो तुम्हारा बयान लेगा और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। तुम भी जब डॉक्टर के पास जाना तो अपने होश हवास में रहना। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर का जवाब मुस्बित हो और तुम्हारी माँ कामयाब हो जाए। 20 साल जहमत उठाई, 20 साल जहमत उठाई और उसका यह नतीजा हुआ। वो खुद तो तुम्हें छोड़कर फ्रांस चल दी। 20 साल जहमतें उठाई हमने, 20 साल अपनी रातों की नींद हराम की अपनी औलाद के लिए। जरा देखो तो
सौदा बुरा तो नहीं रहा, जितना पैसा मेरी परवरिश पर खर्च किया उससे दुगना मेरी माँ से लेते रहे, वरना वो तमाम पैसे और डॉलर जो मेरी माँ भेजती रही कहाँ गए, जो अब आप मुझ पर परवरिश का एहसान जता रहे हैं। मुझे रखा इसलिए था कि परवरिश के बहाने पैसे हासिल कर सके।
ये किस किस्म की बातें कर रही हो बेटी? तुम्हारा मतलब है जो पैसा तुम्हारी माँ भिजवाती रही है वो मैंने हड़प कर लिया? पहले उस रुको,
इसे यहाँ से ले जाना।
अगर किसी ने देख ले तो?
ऐसे कैसे देख लेगा, इसे किसी सुनसान जगह ले जाएंगे। जल्दी करो,
पता नहीं उसका मोबाइल भी ऑफ है।
मैंने आपसे कहा भी था कि उसका ख्याल रखिएगा,
वो बहुत बदल गया है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है।
जो भी कहते हैं उसे भूल जाता है, जो भी तय होता है उसे कुछ याद नहीं रहता।
मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन फिर भी अगर उसकी कोई खबर मिली तो मैं आपको जरूर इत्तला कर दूंगा।
बहुत शुक्रिया।
आप परेशान ना हो, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है।
इंतजार करूंगी।
बस आप परेशान ना हो, वो मिल जाएगा। खुदा हाफिज।
अंदर बैठो। चलो चलो चलो।